मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 12 मई 2015 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी अपने प्यारे श्रोताओं का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने चार उन नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं तरुण शर्मा पटियाला से, सुरेंद्र प्रजापति इलाहाबाद से, दीप्ति सैनी जयपुर से और सुमित कुमार वर्मा इंदौर से। तरुण, सुरेंद्र, दीप्ति और सुमित, आप सभी का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से यह इस बात का सूचक है कि आप डेली ऑडियो गाइडेंस के अतिरिक्त भी कुछ पाना चाहते हैं और मैं एकेडमी की ओर से आप सबको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपकी यह इच्छा न केवल पूरी ही होगी बल्कि कहीं उससे भी अधिक कुछ और भी होगा। लेकिन डेफिनेटली मुझे इसमें आप लोगों के भी सहयोग की जरूरत होगी, जिसके लिए मैं लगातार आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहा हूं, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और कुछ उपाय भी बता रहा हूं। और मैं समझता हूं दोस्तों कि मेरा जो एक मोटिवेशन का जो पार्ट होता है जो ठीक इसके बाद शुरू होगा वह एक तरीके से उसी तैयारी का ही हिस्सा है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास कुछ मेल आते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि सर आप जिस मानसिक मजबूती की बात कहते हैं वो क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। जो आप कहते हैं कि आप अपनी पात्रता बढ़ाइए, जितना बड़ा पात्र होगा उतना ही आप यहां से लेकर जा सकेंगे, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी पात्रता को कैसे बढ़ाएं, अपने पात्र को बड़ा कैसे करें। देखिए, एक बहुत सिंपल सी बात है, हम जब किसी भी चीज की इच्छा करते हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, तो केवल चाहने से नहीं होता है मित्रों। सबसे पहले हमें स्वयं को उसके योग्य बनाना पड़ता है, तभी आप पा सकते हैं। आप सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं तो उसकी जो आप तैयारी कर रहे हैं, ऑडियो गाइडेंस सुन रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं और कहीं कहीं जा रहे हैं, 10 लोगों से मिल रहे हैं, ये अगर सच पूछिए तो ये आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिविल सर्वेंट बनने के योग्यता को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहते तो क्या तब भी आप पढ़ाई करते? नहीं, तब आप अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते, फिर आप अपने खेल की प्रैक्टिस करते। अगर कोई सिंगिंग करना चाह रहा है, गायक बनना चाह रहा है, तो वो अपने गले को फिट रखना चाहेगा और फिर रियाज करेगा। तो मित्रों, इसे ही मैं कहता हूं योग्यता प्राप्त करना, पात्रता हासिल करना। और पात्रता शब्द पात्र से ही बना है। पात्र का मतलब होता है बर्तन जिसमें हम चीजें रखते हैं। मेरे पास अगर छोटी सी कटोरी होगी तो उसमें पता लगा कि 100 ग्राम घी आएगा, और अगर मेरे पास बड़ा सा कड़ाहा होगा तो पता लगा उसमें 100 किलो घी आएगा। तो डिपेंड करता है कि मेरा पात्र कितना बड़ा है, यानी कि मेरी जो सफलता अंततः होगी, जो मुझे मिलेगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरा पात्र कितना बड़ा था, मेरी पात्रता कितनी बड़ी थी। तो मित्रों, जहां तक सिविल सर्विस की बात है वो आप कर रहे हैं, मैं जो आप लोगों से स्पेशली ऐसे स्टूडेंट से जो अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जो एकेडमी में 15 दिन की क्लास के लिए आएंगे, उनके लिए जो मैं ये बात कहता हूं विशेषकर, वो इसलिए क्योंकि वो कुछ अलग और पाना चाहते हैं, उनको लगता है कि ऑडियो गाइडेंस के साथ साथ कुछ और भी हमें जरूरत है और वो यहां आएंगे। तो मित्रों, ये वन वे ट्रैफिक का मामला नहीं होता, एक तरफा चीजें नहीं होती हैं। हम एकेडमी आपको देगी तो डेफिनेटली आपको लेने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो उसमें आपको जो भी अपनी मानसिक तैयारी करनी है, मानसिक मजबूती, आप अपने अंदर से फियर को हटाइए जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं और अभी करेंगे भी। आप अपने को समर्पण की मुद्रा में ले आइए, चीजों को एक्सेप्ट करने का भाव अपने अंदर पैदा कीजिए, दिमाग में क्लैरिटी रखिए कि हमें क्या हासिल करना है, कैसे हासिल करना है। तो इस तरह की जब आप अपनी मनोविज्ञान की रचना करने लगेंगे तो धीरे धीरे आप में वो पात्रता खुद आती चली जाएगी। तो मित्रों, मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि अगर कुछ स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई तो उन्होंने क्लियर कट इसके बारे में लिखा, तो मैंने थोड़ी सी आपको इशारे में ये बात बताई है और मुझे लगता है कि शायद इतना ही पर्याप्त होगा। तो मित्रों, अब मैं आता हूं अपने मोटिवेशन वाले पार्ट पर, और हम लोग अभी फियर पर बात कर रहे थे, फेथ एंड फियर पर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फियर पर। फेथ पर तो हम लोग खूब बातें कर चुके हैं, सच पूछे तो जो क्वांटम फिजिक्स पर जो हमने बात की है वो एक तरह से फेथ की ही बात थी। दूसरी बात मित्रों, मुझे ये भी लगता है और शायद आप लोगों को भी लगे कि अगर आपके अंदर से फियर खत्म हो जाए तो क्या ऑटोमेटिक उसकी जगह पर फेथ नहीं आ जाएगा? क्योंकि देखिए, ये तो प्रकृति का सिद्धांत है कि शून्य तो यहां कुछ होता ही नहीं, वैक्यूम, तो प्योर वैक्यूम को नेचर कभी भी बर्दाश्त नहीं करती है। तो मेरे दिमाग में मान लीजिए कि फियर है, उस फियर को मैंने हटा दिया तो मेरा दिमाग खाली हो गया, तो अब जो उसकी जगह लेगा, फियर की जगह लेगा, वो क्या होगा? वो फेथ होगा। तो अभी हम फियर पर ही बात कर रहे हैं। मित्रों, मैंने इस पर वाकई बहुत सोचा है और ये एक ऐसा तत्व है, देखिए, जो फियर है, जो भय है, डर है, आशंका है, ये सब उसी के रूप हैं। ये एक ऐसा तत्व है जो सबके अंदर होता है, ये मान करके चलिए। आप में से अगर किसी के अंदर भी है, सबके अंदर भी है, तो इसको लेकर के चिंतित मत होइए कि हाय मेरे अंदर क्यों नहीं है, बल्कि सच पूछिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फियर होना, भय होना अच्छा भी होता है। एक ऐसा छोटा बच्चा, बालक, 2 साल 3 साल का लड़का है, लड़की है, जो किसी चीज से डरता ही नहीं, डरती ही नहीं, आप उनके मां बाप से पूछिए कि कितने भयभीत रहते हैं कि इसको तो किसी से डर ही नहीं लगता, ये आग में भी हाथ झोंक देता है, ये कुर्सी पर चढ़ करके पता लगा कि बिजली के स्विच से खेलने लगता है, तो क्योंकि उसके अंदर फियर नहीं है। तो कुछ अमाउंट तक का फियर होना हमारे लिए अच्छा भी होता है ना। तो इसको पूरी तरह से आप आउटराइट रिजेक्ट मत कर दीजिए, लेकिन जो संकट होता है वो ये है कि हमको बात बात पर फियर होने लगता है, और ये एक बहुत बड़े एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी है। तो देखिए मित्रों, मुझे लगता है कि एक बात जो हमें सबको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए वो ये कि ये जो फियर होता है, जो भय होता है, ये मूलतः बाहर कहीं नहीं होता, ये जो कुछ भी होता है वो हमारे अपने अंदर होता है। यदि इस मूलभूत सिद्धांत को हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने बहुत से भय के कारणों को बड़े रियलिस्टिक तरीके से मैं कह रहा हूं, ये केवल यूटोपियाई तरीके से नहीं, ये काल्पनिक तरीके से नहीं, वास्तव में बड़े यथार्थवादी तरीके से हम उसे बिल्कुल समझ लेंगे। मित्र, कभी कभी मुझे ये लगता है कि आपको मैं 2 प्रसंग सुना रहा हूं। पहला वो है जो भागवत में प्रसंग है कृष्ण को लेकर के, कि जब यशोदा बार बार कृष्ण से कहने लगी कि तुम मिट्टी खाते हो, मिट्टी खाते हो, तो कृष्ण ने अपना मुंह फाड़ दिया, बच्चे थे उस समय, और उन्होंने कहा कि लो देख लो कि मैं कहां मिट्टी खाता हूं, अगर मिट्टी खाता हूं तो मेरे मुंह में होगा। और जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो मां यशोदा देख करके बिल्कुल भौचक्की रह गई, एकदम आश्चर्य में पड़ गई, क्योंकि कृष्ण के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था, ये एक तरह से उनका विश्व रूप था। एक तो कृष्ण ने वहां अपना ब्रह्मांड रूप दिखाया, दूसरा आपको पता होगा कि जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में था और युद्ध से इनकार कर रहा था, तो अंत में गीता का उन्होंने उपदेश दिया, अर्जुन को समझाने की कोशिश की, वो बेसिकली मैं उसको काउंसलिंग मानता हूं, हम उपदेश की बात कहते हैं, वो उपदेश नहीं है, वो तो बकायदे डिस्कशन है, टू वे डिस्कशन है, दोनों कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, कृष्ण समझा रहे हैं, अर्जुन क्वेश्चन कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि इससे खूबसूरत गुरु शिष्य परंपरा का दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि मित्रों, आप प्रश्न कीजिए, आप फीडबैक दीजिए, आप बताइए मुझे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए करना है। तो लगातार अर्जुन प्रश्न कर रहा और कृष्ण उसके उत्तर दे रहे हैं। अंत में जाकर के फिर कृष्ण ने देखे कि अर्जुन तो लगातार क्वेश्चन किए ही जा रहा है और ये समझ नहीं पा रहा है, तो कृष्ण ने साथ 10वें 11वें अध्याय में बिल्कुल लास्ट उत्तरार्ध में जाकर के फिर अपना विश्व रूप दिखाया और उन्होंने कहा कि देखो, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो मेरे अंदर है, और उसको देखने के लिए उन्होंने अर्जुन को एक विशेष दृष्टि दी, क्योंकि सामान्य दृष्टि से वो विश्व रूप कृष्ण का नहीं देखा जा सकता था। मित्रों, मैं आपसे अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, चमत्कार की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं इसका अर्थ जो है वो बता रहा हूं। कृष्ण के अंदर यशोदा ने भी ब्रह्मांड को देखा और अर्जुन ने भी ब्रह्मांड को देखा, यानी कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड यानी कि दुनिया, मेरे से बाहर जो कुछ भी है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो सब मेरे ही अंदर है। ये मैं एस्टैब्लिश करना चाह रहा हूं, बाहर कुछ भी नहीं है, वो सब मेरे अंदर है। और यदि सब कुछ मेरे ही अंदर है, तो आप इसे फियर पर अप्लाई कर दीजिए कि जो फियर भी है, जो भय भी है, क्या वो मेरे अपने ही अंदर नहीं है? और मुश्किल तब होती है जब है वो अंदर और हम मान करके चलते हैं कि वो सब बाहर है। हम मान के चलते हैं सब भूत प्रेत कहां है, बाहर है, पीपल के पेड़ पर होगा, शमशान घाट पर होगा, फलानी जगह होगा, वहां भूत बैठा होगा। कभी नहीं सोचते कि वो हमारे दिमाग में है। बीमारी कहां है, अस्पताल में है, संक्रामक में है, फलानी जगह है, ये नहीं समझते हैं कि बीमारी हमारे अंदर है। हमारे अंदर, मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि बाहर बीमारियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाहर बीमारियां नहीं है, लेकिन फियर में आप है ना। जो व्यक्ति अंदर सोचेगा कि बीमारी मेरे अंदर होगी, पहले तो फियर को खत्म करेगा, क्योंकि फियर ही अपने आप में एक बीमारी है। फिर वो दूसरा स्टेप क्या लेगा कि एनालाइज करके वो बीमारियों से बचने की कोशिश करेगा कि किन किन कारणों से बीमारियां ये होती हैं, और उन कारणों को वो टालने की कोशिश करेगा, बीमारियां नहीं होंगी। तो आप देखेंगे कि जो कुछ भी है वो अंदर है। अभी कुछ महीनों के बाद आप प्री का एग्जाम देने जाएंगे सिविल सर्विस का, आपके दिमाग में भय चल रहा होगा कि पेपर कैसे होंगे, ठीक होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा कठिन ना आ जाए, कहीं मैं उस समय बीमार ना पड़ जाऊं। अब आप सोच करके देखिए कि क्या बाहर कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए ये षड्यंत्र रच रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट जब एग्जाम देने आएगा तो मुझे इसको लू लगानी है, इसको फीवर पैदा करना है, इसके पेट में दर्द पैदा करना है, इसके लिए कठिन पेपर तैयार होना है। बाहर क्या हो रहा है? बाहर कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो मानसिक जगत में हो रहा है। जितनी भी घटनाएं हैं हमारी मानसिक जगत में घट रही हैं, और हम एक तरह से फियर 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 लगातार उस भय से आतंकित होकर अपने वास्तव में जो हमारी शक्ति है, जो हमारी क्षमता है, उसको कमजोर कर रहे हैं, बल्कि सच मानिए तो खो भी रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भय की मानसिकता होती है वो हमारी ऊर्जा का हरण कर लेती है। देखिए, जो दिमाग है, दिमाग ऐसे नहीं सोचता है, दिमाग को भी ऊर्जा चाहिए। हमारे अंदर जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं उन सबको ऊर्जा चाहिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा हमारे दिमाग का कितना वजन है, हार्डली 1200 ग्राम 1300 ग्राम। एक आदमी का कितना वजन होगा, 55-60 किलो तो मान लीजिए। तो 55-60 किलो हमारे पूरे शरीर का वजन है, और हमारे दिमाग का वजन है हार्डली 1200 से 1500 ग्राम। अब अनुपात निकाल लीजिए कि इतने में हमारे दिमाग के वजन का अनुपात कितना। इतना तो कम से कम सीसेट की प्रैक्टिस आप कीजिए, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन मतलब ऊर्जा लेते हैं, उसका लगभग लगभग 16-20% उस ऑक्सीजन को केवल हमारा दिमाग खा जाता है, हमारा दिमाग पी जाता है। बताइए, वजन उसका कुछ नहीं है, 1.25 किलो, 60 किलो में 1.25 किलो। अनुपात आप निकाल करके देखिए तो पता लगेगा कि 2-3% होगा। और खा कितना रहा है ऑक्सीजन, 20%। मतलब आपकी भागीदारी होनी चाहिए 2%, और खा जा रहे हैं आप 20%, क्योंकि ऊर्जा लगती है, सोचने में ज्यादा ऊर्जा लगती है, चिंता में ज्यादा ऊर्जा हमारी खर्च होती है। तो मित्रों, आज मैं इसको यहीं समाप्त करूंगा। पहले सिद्धांत की स्थापना मैंने की है कि जो भय होता है वो हमारे अंदर होता है, बाहर नहीं होता। इसको जब आप अपनाएंगे तभी आप बहुत अच्छा इंटरव्यू देकर के आ सकेंगे, और परीक्षा में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ सकेंगे। क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर व्यक्ति, और जो भयभीत होगा वो मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होगा, कभी भी सही परफॉर्म नहीं कर सकता, चाहे वो खेले, चाहे वो गाना गाए, चाहे वो परीक्षा दे, चाहे वो स्टेज पर स्पीकिंग करें। राइट फ्रेंड, हम आगे और भी इस पर बात करेंगे, लगातार बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है मुझे लगता है, और हमको कुछ ना कुछ तो दोस्तों बात करने के लिए चाहिए भी। तो अब मैं आता हूं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेज पर, और वो है कल के AIR की न्यूज। मित्रों, कल जो AIR की न्यूज है वो तीन चार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे मिली हैं, उनकी मैं चर्चा करना चाहूंगा। हालांकि कोई बहुत कंप्लीट न्यूज वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका आधार बना करके हम कुछ बातें कर सकते हैं, और उसका सिविल सर्विस में उपयोग भी है। पहला फ्रेंड्स, आपने देखा सुना कि जो अघोषित विदेशी आय और संपत्ति ब्रैकेट में करारोपण विधेयक 2015 था, ये एक तरह से काला धन के खिलाफ जो सरकार नारा देकर आई है, नारा तो नहीं कहना चाहिए, जो वायदा करके आई है काले धन को समाप्त करने का, तो उसको लेकर के आप देख रहे हैं कि विदेश में कितना काला धन है, उसका पता लगाने के लिए एक अलग से आयोग बना दिया गया है, एक समिति बना दी गई है, उस पर काम कर रही है। तो अब सरकार एक विधेयक लेकर के आई है जिसका नाम है अघोषित विदेशी आय और संपत्ति ब्रैकेट में करारोपण विधेयक 2015। इसको आप सिंपली कह सकते हैं कि काला धन विरोधी विधेयक, अभी समझने के लिए हम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे। ये लोकसभा में पेश किया गया, और एक बहुत अच्छी बात है कि ये ध्वनिमत से पारित हो गया, मतलब जो हमारा जो विपक्ष था उसने भी पूरी तरह से इसका समर्थन किया। अब आप देखिए मित्रों, एक दो चीज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये जो विधेयक है ये अपने देश में जो अघोषित आय है उसके लिए नहीं है, ये विदेश में जो अघोषित आय है उसके लिए है। यानी कि अगर मैं मान लीजिए कि भारतीय नागरिक हूं और मैं विदेश में कोई संपत्ति खरीदना चाहता हूं या किसी बैंक में पैसा रखना चाहता हूं, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं है, उसकी जो प्रक्रिया होगी सरकारी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया पूरी करके मैं बैंक में पैसा भी रख सकता हूं, वहां कहीं भी संपत्ति भी खरीद सकता हूं, वहां के कानून का पालन करते हुए और अपने देश का कानून का पालन करते हुए, उसके लिए कोई संकट नहीं है कि हम विदेश में पैसा रख ही नहीं सकते। इसीलिए वर्ड यूज किया अघोषित संपत्ति। और काला धन क्या होता है? अघोषित धन जो प्रोसीजर के तहत नहीं किया गया है, जो सही मायने में लीगल प्रॉपर्टी नहीं है, यह है। तो यह स्पेशली केवल फॉरेन में हमारी जो संपत्ति होगी उसके लिए है, भारत में जो हमारी संपत्ति होगी उसके लिए नहीं है। उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो पहली बात तो यह ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, उसमें जो सरकार ने इसमें जो प्रोविजन किया है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, वो ये है कि सरकार ने अभी मौका दिया है कि आप इसे घोषित कर दीजिए, जो भी आपकी विदेश में संपत्ति है उसे आप घोषित कर दीजिए, और अगर आप ऐसा करेंगे तो उस पर जितनी संपत्ति आप घोषित करेंगे उसमें 30% आपको टैक्स देना होगा। मान लीजिए कि मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपए विदेश में जमा है, तो आपको 30% टैक्स देना होगा, मतलब 30% आपको टैक्स देना होगा, और इतना ही जुर्माना देना होगा, मतलब 30% आपको और देना होगा। तो इसका मतलब है कि 60% आप दे देंगे, 40% आपके पास रह जाएगा अगर आप अभी घोषित कर देते हैं तो। और यदि घोषित आपने नहीं की या कम घोषित किया, बाद में पता लगा, तब क्या होगा? तब उसमें दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि 30% तो टैक्स देना ही होगा, फिर 90% आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और इसके साथ ही 10 साल के जेल की सजा भी भुगतनी पड़ेगी। ये बहुत हार्ड प्रोविजन है, और इस हार्ड प्रोविजन को सभी विपक्षी दलों ने बहुत ध्वनिमत से स्वीकार किया है। क्योंकि मित्रों देखिए क्या होता है कि जब तक सजा थोड़ी सी हार्ड न हो तब तक वो प्रतिबंधात्मक उसका असर भी नहीं होता है। जैसे भारत में ही आप ट्रैफिक रूल्स देख लीजिए, हेलमेट पहन करके अगर आप नहीं बाइक चलाएंगे तो 50 रुपए जुर्माना लगेगा, कहीं कहीं 100 रुपए जुर्माना लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए जुर्माना लगेगा। आजकल 50, 100, 200 रुपए की कोई परवाह नहीं करता है। तो ठीक है, जब पकड़ जाएंगे तो दे देंगे, लेकिन कल्पना कीजिए कि इसी की जगह पर अगर यह कर दिया जाए कि 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा, तब काफी कुछ रोक लग जाएगी। और उसमें फिर इस तरह के प्रोविजन कर दिए जाए कि पहली बार तो 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा, दूसरी बार फिर आपका एक साल के लिए लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा दूसरी बार पकड़े गए तो, और अगर तीसरी बार आप पकड़े गए तो तीन साल के लिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, और अगर चौथी बार पकड़े गए तो जीवन भर के लिए आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। तब आपको क्या लगता है कि कोई हिम्मत नहीं करेगा? मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप डेवलप्ड कंट्री में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां जो इस तरह की जो सजा का जो प्रोविजन है वो बहुत हार्ड है। सिंगापुर जैसे में तो ये कि अगर आपने कहीं गलती से थूक भी दिया तो हजारों रुपए का जुर्माना है, इसीलिए वो सिंगापुर आज इतना साफ सुथरा भी है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए जो इतना कठिन जो सख्त प्रावधान किए गए, क्योंकि देखिए आपको पहले से बता दिया गया कि ये रूल्स रेगुलेशन से ऐसा मत कीजिए, अब जानते हुए भी आप ऐसा कर रहे हैं तो ये तो एक तरह से धोखाधड़ी हो गई, सरकार को समाज को सीधे सीधे उसके आंखों में धूल झोंकने जैसा हो गया। तो इसमें सरल या हल्के प्रावधान क्यों होने चाहिए? तो ये मित्रों, ये बिल अभी राज्य लोकसभा से पारित हो गया है और डेफिनेटली राज्यसभा में तो फिर पारित हो ही जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ ही न्यूज में दो और बातें थी, दो और विधेयक के बारे में चर्चा की गई थी, आपको ध्यान होगा। एक तो था जमीन अधिग्रहण विधेयक को लेकर के जो लंबे समय से इश्यू जो चल रहा है, अब इसको अब ये कहा गया है जमीन अधिग्रहण विधेयक को कि इसे अब संसद के जो दोनों जो हमारे सदन है उसके संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पर विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच में काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है। लोकसभा में तो पारित बिल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो ही गया है, लेकिन राज्यसभा में पारित होने में इसको काफी परेशानी हो सकती है और विपक्ष के ज्यादातर पार्टियां इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में अब फैसला किया गया है कि ठीक है, इसको जो हमारे संसद के दोनों सदन है लोकसभा और राज्यसभा उनके सदस्यों को मिलाकर के एक संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, वो फिर इसके प्रोविजंस को देखे और इस तरह के एक विधेयक तैयार करने की कोशिश करे जिसमें विपक्ष की जो दलीलें हैं, विपक्ष के जो तर्क हैं, उनका समाधान हो सके और जो सरकार जो जिस उद्देश्य से इसको लाई है उस उद्देश्य की भी पूर्ति हो सके। ठीक इसी तरह से मित्रों, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट बिल था इस पार्लियामेंट सेशन के लिए वो जीएसटी को था लेकर के था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस को लेकर के, इसको भी उसी वही संकट से गुजरना पड़ सकता था राज्यसभा में जाकर के, इसके भी कुछ प्रोविजंस को लेकर के विवाद की स्थिति थी। ये कांग्रेस ने पहले इस बिल को तैयार किया था, अब कांग्रेस उसके कुछ प्रोविजंस पर आपत्ति कर रही है। तो कांग्रेस शुरू से मांग कर रही थी कि राज्यसभा में इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, जिसे इंग्लिश में हम सेलेक्ट कमेटी कहते हैं। तो इस पर भी सरकार तैयार हो गई है और जीएसटी बिल भी प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। तो अब देखते हैं मित्रों कि इसमें अब आगे क्या होता है, और चूंकि अब समिति को सौंप दिया गया है तो सामान्यतः यह माना जाना चाहिए कि एक समझौते का बिंदु आएगा और इसके बाद ये दोनों बिल पारित हो जाएंगे। मित्रों, अभी जो अघोषित संपत्ति विदेशी संपत्ति की हम बात कर रहे थे उसी से रिलेटेड एक दो बातें और हैं। आपने न्यूज में भी आपने देखा कि जय ललिता, ये हमारे अपने देश के काले धन की बात है, अघोषित संपत्ति उसी तरह से कि जयललिता जी जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री थी उन पर अघोषित संपत्ति को लेकर के एक न्यायालय ने काफी लंबा वो केस चला, लगभग 18-20 साल तक वो केस चलता रहा। तो एक विशेष अदालत ने उनको आरोपी उनको अपराधी ठहराया था, जैसे ही उनको अपराधी ठहराया गया तो अब नए कानून के तहत उन्होंने अपने मुख्यमंत्री का पद उनको छोड़ना पड़ा और इसके बाद फिर कर्नाटक हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की और कल कर्नाटक हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। इस बात को लेकर के भी न्यूज थी, इसको लेकर के अब थोड़े से एप्रिहेंशंस हैं लोगों के दिमाग में अपनी अपनी बातों को लेकर के, और खासकर एप्रिहेंशन इस बात को लेकर के है कि अब जो अघोषित संपत्ति है उसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि 18 साल तक लगातार सुनवाई होने के बाद सजा हुई थी और कुछ ही महीनों के अंदर हाई कोर्ट ने उस पर अपना पूरा तरह से निर्णय दे दिया, जबकि आपको मालूम है कि सालों साल लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ प्रश्न मतलब डिस्कशंस में है, देखिए कि आगे उनके सामने मौका है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं और अपनी बात रखें क्या होता है। लेकिन फिलहाल ये काले धन से जुड़ी हुई जो समस्या है वो सच पूछिए तो इस पर एक एडिटोरियल कमेंट भी है इकोनॉमिक टाइम्स का, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। वो ये है कि जब तक जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होती है, जब तक इसको बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया जाएगा तब तक कि काले धन की समस्या से देश को मुक्ति नहीं मिल सकती। जो जयललिता जी पर जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसको लेकर के दैनिक भास्कर ने एक एडिटोरियल कमेंट किया है, वो मैं आपके नॉलेज सेंटर पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मित्रों, न्यूज AIR न्यूज में आज इतनी ही बातें थी। अब मैं आता हूं अपने तीसरे चरण पर, और वो चरण है अखबारों का। आज अखबारों में काफी कुछ अच्छी बातें हैं, खासकर सिविल सर्विस से डायरेक्ट रिलेटेड बातें हैं। मित्रों, आपको पता है कि हम दो दिन से, खासकर अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो तीन योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें से दो तो बीमा योजना है और एक पेंशन योजना है, इसके बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। इसकी बेसिक चीजें आपको पता लग गई हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजनाएं हैं और एक तरह से कुछ मायने में क्रांतिकारी योजनाएं भी हैं। क्रांतिकारी योजनाएं इस मायने में कि इसके लिए जो बेनिफिशियरी है, जिसका इसको लाभ मिलेगा, उसको भी कंट्रीब्यूट करना है, कुछ ना कुछ देना है, और सामाजिक सुरक्षा के तहत एक बहुत बड़ा उठाया गया कदम भी है। मित्रों, इसको लेकर के अब कुछ एडिटोरियल कमेंट आने लगे हैं, जैसे आज इकोनॉमिक टाइम्स का भी है, जनसत्ता का भी है, और बिजनेस स्टैंडर्ड का भी है, और राष्ट्रीय सहारा का भी है। चार अखबारों के एडिटोरियल कमेंट हैं जो मैं आपको नॉलेज सेंटर में प्रोवाइड कर रहा हूं। इस सभी में आप देखेंगे मित्रों कि जो एक एप्रीहेंशन लोगों के दिमाग में है इन योजनाओं को लेकर के, वो ये है कि इतने सारे लोग हैं, प्रीमियम इतना कम है, और ऐसी स्थिति में जो बैंक हैं जो प्रीमियम लेंगे, फिर इसके बाद केस हो जाने के बाद उसका भुगतान करेंगे, या जो बीमा कंपनी है जो इसमें शामिल होंगी और इतने कम प्रीमियम में उनको 2 लाख रुपए या और सुरक्षा जो प्रदान करेंगी, तो उनके लिए ये कितना फिजिबल होगा, उनके लिए ये कितना व्यावहारिक होगा, कितना संभव हो सकेगा, पहली बात। दूसरी बात यह भी है कि जो आधार जो कार्ड के तहत जो बैंक अकाउंट खोले गए हैं, जनधन योजना के तहत जो बैंक अकाउंट खोले गए हैं, बहुत से में तो पैसा ही नहीं है। बहुत से बैंक अकाउंट ऐसे हैं जो अभी ऑपरेट हो रहे हैं, आगे जाकर के ऑपरेट नहीं होंगे, पिछले अनुभव के आधार पर उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने ये भी बात कुछ अखबारों ने एडिटोरियल में उठाई है कि जो बैंक है वो काफी दूर पड़ते हैं लोगों के, तो वो कितना वहां जाना पसंद करेंगे, लौटेंगे। तो इस तरह के कुछ जो व्यावहारिक परेशानियां हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान इन एडिटोरियल कमेंट में आकृष्ट किया गया है। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बात है, खासकर रिव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें एक एनालिसिस प्रोवाइड की गई है, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये जो योजनाएं हैं ये सीधे सीधे काम की नहीं होंगी। सिविल सर्विस में सीधे सीधे नहीं पूछ लिया जाएगा कि इस योजना के बारे में बताइए, निश्चित रूप से वो जो पूछेंगे उसमें इसी तरह की बात होगी कि कितना व्यावहारिक है, इससे कितना लोगों को फायदा मिल सकेगा, या इसके रास्ते में आए हुए आने वाली बाधाओं को स्पष्ट कीजिए, या पहले की योजनाओं से ये योजनाएं कैसे भिन्न हैं। तो इस तरह के प्रश्न बनेंगे, तो इसका जो एनालिसिस से रिलेटेड जो भी चीजें आपको मिलेंगी, तो मैं चाहूंगा कि उन्हें आप नोट करते जाएं, और इस तरह से आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। मित्रों, कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल कमेंट है, और वो खासकर आप देख रहे हैं कि सरकार किसानों को बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रही है, लगभग एक, अगर हम केवल अनाज पर करें तो फूड सिक्योरिटी पर लगभग 1,15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और इसको लेकर के शांता कुमार पैनल भी आया था जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसके बारे में हम लोग पहले काफी बात कर चुके हैं। सरकार और दूसरे तरीके से किसानों को सब्सिडी देती है, यूरिया पर सब्सिडी है और दूसरी चीजों पर सब्सिडी है, उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, आप जानते हैं। तो लगातार ये दबाव बन रहा है सरकार पर कि वो इस सब्सिडी वाली पॉलिसी को खत्म करे, और सच इसमें ये दिया हुआ है कि मोदी सरकार इस पर विचार भी कर रही है, वो एक तरीका अपना रही है कि इसकी जगह पर क्या किया जाए। तो इसमें उन्होंने जो सजेस्ट किया है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा सजेशन है, वो ये है कि जो सब्सिडी की जो रकम है, अभी जितनी भी सब्सिडी एग्रीकल्चर को दी जा रही है, एग्रीकल्चर फील्ड को, सेक्टर को, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। टोटल जो अमाउंट ऑफ मनी है वो तो उतनी ही हो, जरूरत इस बात की है कि जो ये पैसा है उसका इस्तेमाल अब सब्सिडी जो अब तक दी जा रही उस पैटर्न पर न करके नए पैटर्न पर किया जाए। अभी तक क्या होता है कि खाद पर सब्सिडी दे दी गई, तो अब खाद का प्रयोग, यूरिया बहुत ज्यादा जमीन में होने लगा, तो पता लगा कि वो जमीन अब ऊसर बन रही है, कम उपजाऊ हो रही, तो वो एक तरह से रिएक्शनरी हो रही है, उल्टा हो रहा है। तो इन्होंने कहा है कि जो सब्सिडी का जो पैसा है सरकार कहां कहां खर्च करे, तो इन्होंने बकायदे उसके बारे में बताया है कि सड़कें बनवाए, गांव के क्षेत्रों में सड़कें बनाए, रिसर्च के क्षेत्र एग्रीकल्चर के क्षेत्र में रिसर्च करे, सिंचाई की सुविधाएं अधिक से अधिक उपलब्ध कराई जाए, ज्यादा से ज्यादा गोडाउन बनाए जाए, तो इंश्योरेंस किसानों को इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, तो ये पैसा यहां खर्च किया जाए तो इससे ज्यादा लाभ मिल सकेगा और एक स्थायी चीजें बन सकेंगी। तो मित्रों ये भी मैं इंडियन एक्सप्रेस का जो एडिटोरियल कमेंट है कल के अखबार का वो मैं आपको नॉलेज सेंटर पर प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मित्रों AIR न्यूज से इतना ही। अब मैं आता हूं आज के अंतिम चरण पर और वो ईमेल का चरण है। मित्रों दो ईमेल मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा जो छोटे छोटे हैं। एक ईमेल आया है ममता चाहर का जो आगरा से हैं और जो यहाँ स्टूडेंट भी रही हैं एकेडमी की। उन्होंने मेल लिखा है कि सर मेरे लेख को बिजनेस स्टैंडर्ड के 5 सर्वश्रेष्ठ पत्र में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें आपके मनरेगा के उत्तर विश्लेषण RDO की बहुत बड़ी भूमिका है, विशेषकर वो बात जिसमें आपने कहा था कि कंटेंट या थॉट से उत्तर को गूंथने की कला का प्रयोग करो। मैंने अपने इस लेख में आपके उस सुझाव का प्रयोग करने का प्रयास किया है। सर मुझे बहुत इसके लिए बहुत बहुत आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। ममता आपको बहुत बहुत इसके लिए हम सबकी बधाई और हम सबकी तरफ से बहुत बहुत भविष्य की अच्छी शुभकामनाएं भी, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने इस एक्टिविटीज को इसी तरह से आगे बढ़ाती रहे। मित्रों इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भी आपके लेख में आपके बोलने में विचार झलकते हैं उसमें कुछ कंटेंट दिखाई देता है, तथ्य दिखाई देता है, तो निश्चित रूप से वो दूसरों से बेहतर हो जाता है और सिविल सर्विस आपसे इसी बात की उम्मीद भी करता है। और इसके बाद मित्रों एक और है मेल मेरे पास कविराज मेहरा का जो भोपाल से हैं। इन्होंने ये लिखा है कि अभी मध्य प्रदेश के स्टेट सिविल सर्विस के एग्जाम हुए थे और मैं उसको एग्जाम देने गया था, और फिर उन्होंने लिखा है कि आपको धन्यवाद देता हूं, ये बधाई देना चाह रहा हूं कि GS फर्स्ट पेपर में लगभग 70-80% क्वेश्चन डेली RDO के डिस्कस कर किए हुए थे। CSET 2 में भी जितने कम्युनिकेशन डिसीजन के क्वेश्चंस, इवन जो पैसेज भी थे वो आपने डिस्कस किए हुए टॉपिक पर ही बेस्ड थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कविराज आपको भी बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद और हम लोगों की शुभकामनाएं भी कि आपको इसमें सफलता मिले। और निश्चित रूप से आपने जो ये मेल लिखा है ये खासकर मुझे इस बात के प्रति आश्वस्त करता है कि कहीं ना कहीं हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। और मित्रों मैं इन मेल्स को आपको पढ़ करके सिर्फ इसलिए सुनाता हूं ताकि एक फेथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको आपका थोड़ा बढ़ सके, और यदि वो ऑलरेडी है तो वो बना रह सके, ताकि आप RDO गाइडेंस को अगर सच में अपने लिए जरूरी समझते हैं, आप रोज का आधा घंटा 35 मिनट इसे देते हैं तो फिर पूरे मन से दें ताकि आपको इसका पूरा फायदा मिल सके। यही पर्पज मेरा ऐसे मेल्स को आपके सामने पूरी तरह से पढ़कर रखने का होता है। तो मित्रों अब मैं आता हूं उन सभी अपने साथियों पर जिन्होंने मेल लिखे हैं। बहुत से मेल आज आए हैं, उनमें से कुछ मैं नाम ले रहा हूं और जिनके नाम नहीं भी ले रहा उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेल लिखने के लिए और आभार भी। तो मित्रों कुछ नाम है, सचिन वर्मा इलाहाबाद से, दीपक जोशी अल्मोड़ा से, प्रशांत देहरादून से, शशि सिंह रजनीश रोहतक से, हिमांशु हल्द्वानी से, अशफाक उल्ला, नीरज कुमार औरंगाबाद से, विकास जाखड़, मोहिनी सैनी, तनु प्रिया सिंह, हर्षा हैदराबाद से, पुष्पेंद्र शर्मा आगरा से, राजश्री जाधव पुणे से, सौम्या श्रीवास्तव लखनऊ से, अलका कुमारी, साकेत पांडे गुड़गांव से, मयंक कुमार मुजफ्फरपुर से, राधा झांसी से, शक्ति केसरी इलाहाबाद से और अंकित राज दिल्ली से। आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। विकास आपने वो क्वांटम फिजिक्स की किताब के बारे में पूछा है, आप इसके बारे में हरी से बात कर लीजिएगा, मैं किताब उनके पास भिजवा दे रहा हूं, वो आपको उसकी फोटोकॉपी उपलब्ध करा देंगे। नीरज आपको बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद कि आपने मैं जो क्वेश्चन देता हूं मेन्स के लिए उसका ट्रांसलेशन करके मुझे भेजा है तीनों प्रश्नों का, कि आपने अपनी तरफ से ये कोशिश की, ये आपके प्रयास की मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन अभी वो ट्रांसलेशन मैं इस स्थिति में नहीं पा रहा हूं कि मैं उसे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूं, लेकिन आपने जो कोशिश की है वो डेफिनेटली बहुत प्रशंसनीय है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एकेडमी की तरफ से आभार भी। तो मित्रों इसी के साथ ही मैं अपने आज के इस ऑडियो गाइडेंस को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।